राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 17 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सर द्वारा पर हुआ।
नारायण 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 नारायण। क्या मेरा सुगम हुआ?
आपका
मन में कोई बात सोच रही आई नहीं है अभी। अपने वो कर्णनिरपेक्ष विषय में कोई बात हो तो ये बात बैठी ही नहीं आपकी।
बहुत अच्छी बैठी, समझ में आई उसके अनुसार।
अब उसमें कहो तो बोलो। कम से कम बातों के द्वारा हम समझ तो लें। साधन करके स्थिति थोड़ी तो बड़ी आई एक नंबर की, परंतु कम से कम ऐसी बात समझ में आ जाएगी। ऐसी कर्म निरपेक्ष साधना है और तत्व तो कर्म निरपेक्ष है ही, क्योंकि प्रकृति ये कर्म तो सब प्रकृति के अंतर्गत है। वो प्रकृति से अतीत है, गुणातीत है, तत्व तो है ही, परंतु साधन भी ऐसा है। आप लोगों को शंका हो तो बोलो ही, और कोई हो तो पूछने का विषय हो।
वो कल बात चली थी कि कर्णों का उपयोग संसार के संबंध विच्छेद के लिए है, तत्व तो प्राप्ति के लिए नहीं है।
संबंध विच्छेद भी कर्ण से नहीं होता है। साधना एक शुरू हो जाती है, क्रियाजन्य साधना शुरू होती है। वास्तव में साधन है वो ठीक विचार करते हैं, कर्ण निरपेक्ष होने से ही असली साधना होती है। मानो आश्रय संपत्ति हटाने के लिए जो क्रिया की जा सकती है तो उसमें क्रिया हो सकती है काम की।
क्रिया का क्षेत्र बहुत नीचे,
बहुत छोटा है, बहुत छोटा है वो नहीं। आज एक प्रश्न किया था मेरे सामने कि सज्जन और साधक में क्या भेद है।
सज्जन,
हाँ, ये सज्जन आदमी है, ये साधक है, इनमें क्या भेद है? तो सामान्य रीति से जो रात और दिन भोगों में और संग्रह में ही लिप्त है वो लोगों में रात दिन रहते हैं, और वो ये तावत निश्चित उन्होंने कर लिया है वो कोई सज्जन नहीं है। सज्जन भी है कि भाई अच्छे आचरण करो, अच्छे भाव रखो, सबसे प्रेम रखो, सबका उपकार हो, हित को हो, ऐसे विचार करके जो चलने वाले हैं वे सब सज्जन है। परंतु अपना कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान के साक्षात्कार दर्शन हो जाए, ऐसे भाव रखकर चलने वो साधक है। ये मैंने उत्तर दिया उसका। साधना करने वाले तो साधना करने वाले वे सज्जन तो होते ही है, सज्जन तो होते ही है, और सज्जन होते हुए भी साधक करते हैं। तो साधक की लगन चाहिए साधन की, तत्व की प्राप्ति कैसे हो, उसमें देरी हो रही है, जिसमें उनकी व्याकुलता होनी चाहिए कि तत्व की प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे तत्व ज्ञान हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान का आश्रय कैसे प्राप्त हो, संसार का आश्रय छोड़ के भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे जिनकी लगन लग जाती है ना वे साधक होते हैं। साधकों में ये बात होती है कि वे असाधन नहीं रहते। असाधन साधन दोनों तो कल कहा था तो सब में रहते हैं। मानो पारमार्थिक बात के बिना तो कोई मनुष्य होता ही नहीं। कसाई से कसाई के भीतर दया रहती है, असत से असत बोलने के बाद भी सत्य भाषण उसमें रहता है। जितनी जो पारमार्थिक बात है तो वे भाषण से सर्वथा रहित नहीं होता। मानो दुर्गुण दुराचार से रहित तो हो सकता है, पर सदगुण सदाचार और न दुर्गुण से रहित और नहीं होते। सदगुण सदाचार में दुर्गुण नहीं रहते, यह बात तो हो सकती है, पर केवल दुर्गुण दुराचार ही रही है, हो नहीं सकती, संभव नहीं है। परमात्मा का अंश है ना, परमात्मा का अंश है, जैसे संसार की प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति के अंश की मुख्यता देने पर दुर्गुण दुराचार रहते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति का ही उद्देश्य होता है तो उसके दुर्गुण दुराचार घटते जाते हैं, मिटते जाते हैं, उसमें परमात्मा प्राप्ति होती तो उसमें कोई दोष रहता नहीं। ये तो रही तो देख दुख उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, वहां भगवान और भगवान का सेवक दोनों का एक दर्जा हो जाता है। ये बात उन्होंने दर्पण में आई है, मम साधन में मैं अलग कहा, इसलिए पहले अपने अलग पूछ रही उसमें टिप्पणी में बात कही थी, मम साधन में मांग था स्वर्गीय पुनः हो जाए थे प्रणय न बदलते सर, तो सधर्मता है भगवान की और भगवान की भक्त है तत्व की जिन भक्त है उनके साथ भगवान की एकता सधर्मता है, तो वे तो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, पर साधक में भी विगुण आने लगते हैं, शास्त्र निषिद्ध और साधन विरुद्ध काम उनमें नहीं रहते, ऐसी क्रियाएं नहीं रहती, ये क्रिया होते होते सर्वथा इनका भाव होता तो साधक हो जाता है। जब तक निषिद्ध कर्म भी करता है, जानकर भी करता है, आदत में भी हो जाते हैं ज्यादा, तब तक वो साधन ठीक नहीं है, साधक साधक भी ठीक नहीं है, सिद्ध तो दूर रहा। साधक ठीक रहे तो उसमें प्रवाह से पुरानी आदत से किसी अशुद्धि कामना क्रोध के वश में होने से उससे कुछ दुराचार कुछ हो जाता है, परंतु जाता तो उसकी जलन होगी, उसके दुख होगा, वो सुहाएगा नहीं, वो छूट जाएगा। ये बात साधन साधन दोनों रहते हुए तो हर एक आदमी होता है, कोई ऐसा है ही नहीं कि साधन का अंश भी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का अंश है ना। सास बोलता है झूठ भी बोलता है ये रह सकता है, पर केवल झूठ बोलना ये रह नहीं सकता, केवल हत्या ही करना ये रह नहीं सकता, केवल चोरी ही करना ये रह नहीं सकता, केवल दूसरों का अपकार करता निंदा करना दुख देना ये केवल ही रह, ये केवल नहीं रहता। अशुद्ध चीज है वो शुद्ध नहीं रह सकती, वो शुद्ध चीज है वो रह सकती है, क्या इस वास्ते साधक होता है उसमें है, साधन विरुद्ध काम है वो सही नहीं होना चाहिए। जैसे पैसों का लोभी है तो जान करके पैसों का विपरण नहीं करेगा, वो हो जाएगा तो दुख होगा, जानकर तो करेगा नहीं, और किसी कारण से हो जाए, परिस्थिति कारण से हो जाए तो उसको दुख होगा। ऐसे ही साधन का लोभ होगा तो शास्त्र विरुद्ध साधन विरुद्ध काम उसमें होगा नहीं, कभी किसी परिस्थिति में पुरानी कोई आदत है कभी कोई हो जाएगा तो उसे सहन नहीं पड़ेगी, वो दुख होगा, फिर ठहरेगी नहीं ज्यादा। सज्जन आदमी कहते हैं तो उनमें ऐसी वाली बात हो जाए तो इसमें खटकी कि नहीं, वो मर्यादा पर चलना चाहते हैं और अच्छा समझते हैं, परंतु फिर भी उतनी साधक की बहुत खटकेगी, वो जितनी अधिक खटकेगी उतनी साधक होगा, अगर वो बढ़ चल जाएगी, अगर साधन ठीक होने पर सिद्ध हो ही जाएगा, ठीक साधन हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। साधन साधन तो दोनों चल रहने पर साधक होता है, तो असाधन रह जाता है, रखता नहीं है, किसी से ठीक नहीं सकता। इस बात से अधिक साधु को उचित है कि असाधन चीज हमारे कैसे रह गई, शास्त्र विरुद्ध साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूं मैं, कर नहीं सकता हूं, और ज्यादा दुख होता है, जान होती है, दो चार बार हो जाए फिर नहीं होगा, फिर
ये जो साधन का रूप बता रहे हैं आप, इसमें तो महाराज जी करण सापेक्षता की झलक सी दिख रही है।
झलक भी कोई हर्ज नहीं, करण रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि असाधन रहता है ना, तो करण की अपेक्षा रहती है, जो साधन रहता है वो करण जितनी जितनी करण की अपेक्षा मिटती चली जाती है, उतना उतना साधु ऊंचा ऊंचा सा रहता है, सर्वतर साधु गुण प्रसिद्ध हो जाता है। साधक साधन वर्ण साध्य होता है, विक्रम है, सर्वसर साधन सर्वता साधन वो सिद्ध हो जाता है, तो सिद्ध होता है उसमें करण की अपेक्षा नहीं होती, करण के द्वारा नहीं होता है, जड़ के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से ही होती है, और करण सापेक्ष होगा उसमें जड़ की आवश्यकता रहेगी, करण की आवश्यकता रहेगी, उसमें आवश्यकता है तो उसका अवलंबन करेगा, उसका अवलंबन करेगा तत्व की प्राप्ति मुश्किल हो जाएगी। संग करो बहुत सज्जनों के जो साधक कहलाते हैं और सिद्धि चाहते भी है, परंतु उन्हें मन में जची हुई है कि मन बुद्धि इंद्रिया के बिना साधना नहीं होती, इनसे ही साधना होती, ऐसे सुनने वाले वो कर्म कैसे छोड़ सकेंगे। जल्दी तत्व ज्ञान होता नहीं, विलुप्तता इस वास्ते ही उस तत्व की बात ऐसी जची हुई है कि मन बुद्धि की साधना होती है, मन बुद्धि की साधना नहीं होती, साधन स्वयं का होता है, साधक स्वयं होता है, उनकी तो बात ये जची हुई है कि बोध भी होता है तो बुद्धि से ही होता है, बुद्धि के बिना कैसे होगा, उनकी ये धारणा है, उनके कारण से नहीं समझ में आता, आता ही नहीं, वो निश्चय बुद्धि के द्वारा ही होता है, निश्चय ही चीज है, इसलिए निश्चय करना ही साधन है, निश्चय करना साधन नहीं है, अनुभव होना साधन है, तो वे तो कर्ण को वो सहायक मानते हैं, वो कर्ण निष्पेष कैसे समझना आया, बुद्धि के द्वारा ही बोध होता है, वो कर्ण निष्पेष कैसे समझेगा, ही वही है लक्ष्य वही है, नहीं समझ सकता, बड़ी विचित्र बात है। गीता में भी आया है सुखम आत्यंतिकम यत्त बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धिग्राह्य आया है वेद यत्र बुद्धिग्राह्य आया, कैसे छोड़ेगा बुद्धि को, तो बुद्धिग्राह्य क्यों कहा है, बुद्धिग्राह्य का क्या अर्थ है, तो सुखम आत्यंतिक हो, तो ये तीन पद दे हैं, इसका तात्पर्य क्या है, कि इसका तात्पर्य है कि आत्यंतिकम तो कहना मतलब है सात्विक सुख से अलग ऊंचा, सात्विक सुख है ना उससे ऊंचा, आत्मबुद्धि प्रसाद जम वो बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है, बुद्धि रहती है सात्विक रूप में, तो सतोगुण रूपी प्रकृति रही साथ में, इसको बताया, तो वो बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धिग्राह्य शब्द है, इसका तात्पर्य आत्यंतिक कहना तो है सतोगुण से ऊंचा, और बुद्धिग्राह्यम कहने का है तमोगुण से ऊंचा, मन बुद्धि लीन हो जाती है सुषुप्ति में, वो बुद्धि लीन नहीं होती है, इतना ही तात्पर्य है, बुद्धिग्राह्यम का बुद्धि के द्वारा तत्व का अनुभव होता है, ये अर्थ नहीं है, आत्यंतिकम बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रियों के द्वारा विषय इंद्रिय संबंध से जो सुख होता है वैसा सुख नहीं है, अतिंद्रिय है ये सुख। तो आदर्श सुख से ऊंचा, अतिंद्रिय आदर्श से ऊंचा, बुद्धि ग्रहण तामस से ऊंचा, राजनीतिक सत्व से ऊंचा, ये तात्पर्य है। बुद्धिमान जागृत रहती है बुद्धि, फिर बुद्धि संबंध विच्छेद हो जाता है, सिद्ध में भी साधना में आता है। और ये किस प्रसंग में है? ये ध्यान के प्रसंग है। ध्यान का प्रसंग और योग का प्रसंग इन दोनों में अपना है एकता करी है। 19वां श्लोक है ना,
यथा दीपो निवातस्तो निंगते सोपमा स्मृता,
योगी में इच्छत से इंद्र तो योग महात्मा ना, तो ध्यान का विषय है। और प्रजात ये कमान सर्वान पर आत्मनि आत्मा तो ये कर्म योग है। दोनों का मिलान करो आप, 19वां और 25वां,
19वां 20। यत्रो ब्रह्मते चित्तम निरुद्धम योगि यदा विनयतम चित्तम यदा विनयतम चित्तम
आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो
युक्तः
इत्युच्यते। युक्त कहना सर वो है प्रजाति यदा कामान सर्वान् पारमोदनं आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, तो पूर्व परम प्रसंग है। वो प्रजाति यदा कामान सर्वान् पारमोदनं तो आत्मन्येव आत्मना तुष्टः है। और यहाँ यदा विनयतम चित्तम आत्मन्येव तिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो, पहले वो होता है पीछे होता ही होते फर्क है इसमें, ऐसा लगा
जी।
इसी सेवा
कामनाओं का त्याग पहले ही हो जाता है,
पहले कामनाओं का त्याग होता है फिर जो परमात्मा होती है। यहाँ ध्यान करते ही होते परमात्मा में मन की स्थिति होती है, फिर कामना का नाश होता है। इस विषय का मैं क्यों ये एक और एक फर्क दूसरा बड़ा भारी फर्क और दूसरा है। वो एक आत्मनिव आत्मा तुष्ट वहां जड़ता नहीं है और मन है परमात्मा से सिद्ध हुआ यहाँ जड़ता है। तुम चित्तम आत्मनिव तिष्ठ है चित्त नष्ट हुआ वहां चित्त का संबंध नहीं रहा है, आत्मनिव आत्मा तुष्ट सिद्ध पुरुष है। अरे यहां जो बात कही है ना आत्मनिय और तुष्ट जो आत्मनिव आत्मा तुष्ट है वहाँ वहाँ बुद्धि नहीं है। यहाँ एकदम सिद्ध आत्मनिय सिद्ध आत्मनिय उत्तिष्ठ से तब ये साथी वो निवास सुनने ये ध्यान साधना है।
चित्त का आत्मा में स्थित होना क्या है?
मनुष्य केवल परमात्मा में चिंतन हो, संसार चिंतन वो विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार और संजातीय वृत्तियों का प्रवाह मेरे ध्यान का स्वरूप माना है वो रहा। उसे बदल ध्यान होता है, ध्यान की बात समाधि होती है, समाधि तक संबंध रहता प्रकृति का। सिद्ध पुरुषों की समाधि और विच्छान दो अवस्था मानी है वेदांत में, सुधाचार्य मानी है, परंतु सिद्ध पुरुष होता उसमें विच्छान नहीं होता, वो शायद समाधि होती है। प्रथान होने वाली समाधि नहीं होती है, वहाँ ये साधक की होती है। अब वही अभ्यास केवल पुस्तकों का है, वो कैसे मानेगा इस बात को? वो तो सूचनाचार्य ने माना है, स्त्र की सिक्का भरा समाधि केस हुआ सिर्फ ही किम प्रभा से कि मासित क्यों, तो उन्होंने बताया कि पहले कैसे श्लोक है अभी बोला मैंने वो श्री प्रज्ञा का भाषा समाधिस्थ से श्री प्रज्ञा समाधिस्थ से तो समाधि में स्थित होने वाले की ये बात थी। अरे वो तीन है बुद्धान अवस्था में मधुसूदाचार्य ऐसे ठीक करते थे मानो
समाधि
प्रज्ञा
की क्या
वजह है और बुद्धान
बुद्धान में कैसे चलता है
ऐसा भी है ये विभाग किया। तो ये हमारी जिस्ता नहीं है
आपको तो ये स्थिति समाधि विशेषण है इसका।
हाँ
समाधि जो स्थित प्रज्ञ है
हाँ।
वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, सारी एक साथ है।
अच्छा, अगर इस दो उपचार किया जाए तो किमा सीधे ब्रजेत किम उत्थान ब्रजेत किम कैसे आएगा,
तो समाधिस्थ नहीं रहा।
हाँ, समाधिस्थ नहीं रहा तो, और फिर किम आसीत में समाधि होनी चाहिए। अगर विभाग करें तो किमा सीत ये जो कैसे बैठे ये उत्थान में कैसे होगा, कैसे बैठेगा सतपुर
उसकी समाधि अवस्था तो रही नहीं,
समाधि में
चलेगा कैसे।
हाँ, तो इस बात चलेगा कैसे, तो चलेगा अगर समाधि में लो तो चलेगा कैसे, और विथान में रहो तो बैठेगा कैसे, कैसे कम प्रभाषित विथान में होता है कम प्रभाषित, और हम ब्रजेश की मेरे दो तो बिथान बैठ जाएगी, किम आशीत कैसे बैठेगा बिथान में,
आशीत तो बिथान में नहीं बैठेगा।
तो फिर बिथान की हुई और समाधि से वो समाधि में बताई, तो समाधि में किम आशीत समाधि ले जाए तो फिर ठीक बैठे, ये मन बैठे नहीं बात।
उत्तर में भी तो महाराज जी समा वो समाधि पर उत्तर नहीं आ रहा है,
समाधि पर उत्तर नहीं है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पर कामना को त्याग गया आत्मनि वो आत्मा दुष्ट तब सर्वज्ञ होता है, दुखेश्वर मना है सुखेश पीत रहा है भय क्रोध स्थित फिर मुनि विचित मुनि सब देश में आया है तो किम प्रभाषित कराया जाए, ये स्रोत अनवी स्नेह तो तत्व ना अभिनंदित निर्देश थे, ये दूसरे लोग समाधि है कि मासी तो गुरु मंगा नहीं सर्वसारे निजय निजय शिप्र की प्रतिष्ठा था मधुसा ये लिखते कि मासी में अब मधुसूदन देखो अपने दोनों रोटे को मिला कर देखो थोड़ा गहरा विचार करने से पता लगेगा मतभेद का। आज देखो मधुसूदन और साधु स्वामी इसने क्या क्या फर्क है, तो साधक होता सिद्ध पाई है और ये कर्मयोग के द्वारा सिद्धि है, ये मधुसूदन नहीं मानते, वो तो ज्ञान योग के द्वारा ही मानते हैं सिद्धि, सिद्धि ज्ञान योग द्वारा होती है, कर्मयोग से मानते होता है और उपासना पीछे दूर दूर होता है और बोध से ही ज्ञान दूर होता है, और दूर राम दूर दूर होने से ही सिद्ध होता है, तो उस सिद्ध के ये लक्षण है समाधि के विचित के योग बैठते नहीं ऐसे।
तो समाधि में महाराज जी सभी निर्बीज की निर्बीज अवस्था
हो गए,
तो वहाँ फिर जब तक कर्ण का संबंध है तब तक वो भी काम पूरा नहीं हुआ,
तो कर्म पूरा कैसे हुआ,
सविकल्प निर्विकल्प
कर्ण का संबंध है तो व्युत्थान होता है, कर्म से कर्म निर्विक्र होने पर व्युत्थान नहीं होता, वो सहज अवस्था है, वो उत्तम सहज अवस्था, उसमें कर्ण कहाँ है, कर्ण अवस्था होगी विधान अवस्था एक पर समाधि अवस्था, आप थोड़ा देखो वस्तु देखो कितना ठीक है, ठीक है देखो गया उसमें फिर उसमें शंका करो, बहुत फायदा होगा, बहुत होगा। नारायण नारायण नारायण।